शांति।
ओम शांति।
तीन दिन से आपने बहुत कुछ श्रवण किया है, सुबह से रात्रि तक ज्ञान वर्षा होती रही है ना। अनेक अनुभवी भाई बहनों से आपने बहुत कुछ सुना और आपका भी अपना अनुभव बढ़ गया होगा। यहां से आप जाएंगे तो अवश्य अपना परिवर्तन दिखाएंगे। तो अभी जो हमारा विषय है वो है निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्थिति। ब्रह्मा बाबा के ये अंतिम तीन शब्द थे। ब्रह्मा बाबा स्वयं निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी थे, जो उनके कदम कदम से महसूस होता था। जब भी देखो कैसे अशरीरी हो जाते थे, एक सेकंड में कई बार लगता था है या नहीं है, लाइट के कार्ब में है। योग कराते थे तो जैसे सकाश दे रहे हैं, दृष्टि इतनी पावरफुल थी। तो निराकारी स्थिति तो उनकी इतनी सहज झलकती थी और निर्विकारी तो थे। देखो निर्विकारी में निरअहंकारी तो आ ही जाता है, लेकिन फिर भी निरअहंकारी अलग से क्यों कहना पड़ता है, क्योंकि विकारों में अहंकार भी एक विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो पांचों विकारों को जीतना तो निर्विकारी स्थिति तो कहलाई जाती है, लेकिन फिर निरअहंकारी अलग से क्यों कहना पड़ता है। वैसे तो फिर निरकामी, निरक्रोधी, निर्लोभी, निर्मोही, फिर निरअहंकारी, लेकिन निरअहंकारी को अलग से क्यों स्थान दिया। क्यों? निर्विकारी में तो निरअहंकारी आ गया ना, तो अलग से क्यों स्थान दिया। जी अच्छा, बाकी विकारों को जीतने का लक्ष्य रहता है, लेकिन अभिमान अहंकार इसको थोड़ा कम ध्यान देते हैं, इसलिए अलग से नाम दिया। बाबा कई बार काम विकार के लिए भी कहते हैं, क्रोध लोभ मोह ये जो है ना, अगर थोड़ा है तो फिर भी इतना विकारी नहीं माना जाएगा, लेकिन काम विकार है तो उसको महाशत्रु है, इसलिए विकारी कहते हैं। कामी को विकारी कहते हैं, क्रोधी को क्रोधी कहेंगे, लोभी को लोभी कहेंगे, लेकिन कामी को क्या कहेंगे, ये विकारी है। तो काम विकार तो सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन इन सब का जो आधार है वो तो देह अभिमान है। और देह अभिमान में भी बाबा कहते हैं, एक है अपने आप को हीन स्थिति में देखना और दूसरा होता है उपलब्धियों का घमंड रखना, अभिमान। अहंकार तो उनसे भी बड़ा है, एक होता है भान, दूसरा होता है अभिमान और तीसरा होता है अहंकार। तो भान तो बाबा कहते वो तो अंत तक रहेगा, है ना, रहेगा ना, क्योंकि आत्मा शरीर में होगी तो भान तो है ना कि मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, ये मेरा शरीर है, कर्म करते समय तो देह का भान तो है ही, लेकिन अभिमान और उसका फिर अहंकार, ये तो बहुत बड़ी डिग्री है। अभिमान में भी कई बार हम स्वाभिमान कहते हैं, हाँ मेरा ये स्वाभिमान है, अंदर में हम कॉन्फिडेंस मानते हैं कि ये मेरा स्वाभिमान है, आत्मविश्वास उसको स्वाभिमान भी कहते हैं। तो आत्मविश्वास तो बहुत ऊंची चीज है, लेकिन अगर वो आत्मविश्वास जिसको हम इंग्लिश में कॉन्फिडेंस कहते हैं, अगर वो थोड़ा और ज्यादा हो जाए तो ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस माना आत्मविश्वास तो अच्छी चीज है, पर उससे ऊपर चला जाए, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता है, मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा ही काम है, आज बाबा ने कहा ना, तो वो जो मैं मेरा के चक्कर में आ जाते हैं तो फिर वो अहंकार का रूप ले लेता है। तो वैसे तो स्वाभिमान अच्छी चीज है, ये आत्मा का अभिमान है, लेकिन जब इस देह के अभिमान में बहुत आगे जा चले जाते हैं और इसमें मैं और मेरा आ जाता है, फिर वो अहंकार का रूप ले लेता है। तो बाबा तो कितने निरहंकारी थे, हर वक्त बाबा बच्चों के आगे सदा हाथ जोड़ के झुकते थे। वैसे दुनिया में हाथ जोड़ा जाता है तो हाथ जोड़ते हैं तो उसमें कैसे निर्माणता आती है, जैसे मेरे साथ पांच दसों ही उंगलियां आपके तरफ नमस्ते करते ना, और सिर झुकाकर नमस्ते करते हैं, नमस्ते सिर भी साथ में झुक जाता है। तो हमने दसों उंगली आपके तरफ की कि आप मेरे से दस गुना महान हैं। हैंडशेक करते हैं तो क्या होता है, हा? पांच उंगलियां, आप मेरे से पांच गुना महान है, और वो भी हैंडशेक करेगा, आप भी मेरे से पांच गुना महान है। और जब दोष धरते हैं तो है? तो फिर कितनी उंगलियां, एक ही, और तीन उंगलियां अपने तरफ, और एक उंगली एक अंगूठा ऊपर बना वो साक्षी है, उसको पता है सब कुछ कि मैं उनको दोषी बना रही हूं, परंतु मैं इनसे तीन गुना ज्यादा दोषी हूं। तो इसीलिए पांचों ही उंगलियां आपके तरफ, दसों ही उंगली आपके तरफ, और दसों ही उंगली आपके तरफ में साथ साथ क्या होता है, सिर भी झुक जाता है। माना किसी को अगर झुकाना हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, हा? खुद झुक जाओ तो वो भी आपके आगे झुक जाएगा, अगर आप अकड़ के खड़े रहो तो वो भी अकड़ के खड़ा रहेगा, पर आप झुक जाओ तो वो भी झुक जाएगा। इसलिए बाबा निरअहंकारी बन करके बच्चों के आगे सदा कहते थे, मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं। तो लास्ट दिन भी बाबा ने मुरली चलाई 18 जनवरी रात को, और मुरली तो सेवा की भी थी, धारणा की भी थी, वो तो बाबा की हर मुरली होती है, कुछ भी भासना इस समय नहीं आई, लेकिन सारे दिन में तो बहुत संकेत मिले थे बाबा के। सारे दिन में क्या संकेत मिले थे, 10 बजे बाबा उठ के गए, बाबा ऑफिस में गए, ईशु दादी की ऑफिस से ना, वहां गए और ईशु दादी को कहा कि आज बाबा सब पत्र लिखेंगे। तो शनिवार का दिन था तो ईशु दादी ने पत्र तो लिख मना जो लिखे बाबा ने, वो ईशु दादी क्या करती थी, उनका हिंदी करती थी, क्योंकि बाबा तो उर्दू जैसे लिखते थे, फास्ट 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 फास्ट, चश्मा तो कभी नहीं पहनते थे और फास्ट फास्ट, तो ईशु दादी उनकी अक्षर समझती थी, और वैसे भी कोई न समझे तो हिंदी करती थी, और कभी बाबा डिक्टेशन भी देते थे तो वो लिखती भी थी। तो 10 बजे बाबा ने सब पत्रों का जवाब दिया, 10 से 11 तक एक घंटा पत्रों का जवाब दिया। फिर 11 बजे दादी जी को बुलाया, बड़ी दादी जी वैसे तो मुंबई में रहती थी लेकिन 13 तारीख को दादी जी मधुबन आई थी और 17 तारीख को दादी जी को वापस जाना था। पार्टी लेकर आई थी, विदेश के कुछ भाई बहने थे, मना इंडियन थे लेकिन विदेश में रहते थे, बॉम्बे में रहते थे, तो दादी बॉम्बे से पार्टी लेकर आई थी। तो 17 को दादी जी छुट्टी ले रही थी उनके साथ, तो बाबा ने दादी को रोक दिया, बच्ची आप मत जाओ, पार्टी भले जाए। बाबा दादी के लिए तो बड़ी लॉटरी थी, क्यों? क्योंकि हमेशा जब भी दादी आती थी ना, समझो दादी अगर कहे भी ना बाबा मैं 2-4 दिन और रुक जाऊं, बाबा कहते थे क्यों रुकना है, सीधा क्यों रुकना है, वहां सेवा नहीं है क्या? बाबा बहनों को मधुबन में रहने ही नहीं देते थे, बाबा कहते थे मधुबन भाइयों के लिए ठीक है जो यहाँ रहते हैं, कारोबार में रहते हैं। यशु दादी, लच्छू दादी, थोड़ी दादियां थी, बाकी तो सर्विसेबल हैंड्स तो बाबा के सेवा केंद्रों पर होनी चाहिए, तो दादी जी को तो रखते ही नहीं थे। तो दादी जी तो उस दिन बाबा ने दादी को रोका और कुछ दिन रुक जाओ, रुक जाओ, क्योंकि बड़ी दीदी मधुबन में रहती थी और उन दिनों में बड़ी दीदी जी इलाहाबाद गई हुई थी, इलाहाबाद में मेला था कुंभ मेला। तो बाबा ने दीदी को कहा, दादी को कहा कि दीदी भी नहीं है इसलिए आप रुक जाओ, तो खुश हो गई, रुक गई। तो कैसे, तो वो भी संकेत था। तो 18 जनवरी को बाबा ने दादी को बुलाया, पत्र पूरे किए और दादी को कहा कि आपको बाबा आज सारा घुमाएंगे। तो बाबा कैसे दादी को एक 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 स्टॉक रूम जहाँ बाबा का अनाज रहता है, मधुबन में तो अनाज का भी भंडार है, हाँ चीजों का बहुत कुछ है ना, कितना यज्ञ है बड़ा, और मधुबन ही था तो मैं शांतिवन ज्ञान सरोवर तो की तो बात ही नहीं थी, ये मेडिटेशन हॉल भी नहीं था, हिस्ट्री हॉल ही केवल था। तो बाबा ने दादी को बुला करके एक एक जो कमरे है जहाँ स्टॉक रहता है कुछ, तो वो दादी को दिखाया, देखो बच्ची ये फलाना ये। तो मानो जैसे एक इनडायरेक्टली था, आज ही बाबा सब हैंडओवर कर रहे हैं दादी को, ये कोई बताया नहीं लेकिन बच्चे ये देखो यहाँ अनाज रखा है, क्योंकि दादी को क्या पता, दादी थोड़ी यहाँ रहती थी, बड़ी दीदी रहती थी उनको ही सब मालूम था। तो दादी को बाबा ने सब दिखाया। फिर उसके बाद शाम दोपहर को बाबा भोजन करके थोड़ा विश्राम करके करीब 3-3:30 बाबा फिर से ऑफिस में गए, यशु दादी को कहा, क्योंकि 2 बार पोस्ट आती थी उस समय, ईमेल तो ये सब कुछ नहीं थे, पोस्ट इतनी आती थी सब सेवा केंद्रों की। तो बाबा ने यशु दादी को कहा कि बच्ची अभी भी जो पोस्ट आई है ना वो बाबा सब जवाब देंगे। तो सवेरे तो बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा चेस्ट पेन था, तो दादी जी ने बाबा को कहा कि बाबा आप आराम कीजिए, ठंडी बहुत है, जनवरी माना कितनी ठंडी, अभी तो कुछ भी नहीं है, तो उस समय ठंडी बहुत थी, बाबा कमरे में रहिए। उस समय हीटर भी नहीं होते थे, पता है कैसे हीटिंग करते थे कमरों को, वो कश्मीर में पता नहीं आपने देखा है या नहीं, उसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, हाँ सगड़ी जैसे वो कोयले रखते हैं, और वो कश्मीर में ये खास वहाँ ऐसे आप उसको कुछ नाम देते हैं, हाँ एक कांगड़ी शब्द देते हैं, तो वो बाबा के कमरे में रखते थे। और कभी कभी बाबा जैसे ना गोदरी में करतार ऐसे कहते थे, बाबा कंबल ओढ़ के या रजाई ओढ़ के बैठते थे, क्योंकि शॉल से क्या चलेगा तो रजाई ओढ़ के भी आते थे। तो बाबा कहते थे गोदरी में करतार, गोदरी माना वो रजाई जो नेपाली रजाई जैसे होती है ना। तो फिर तो बाबा को दादी ने कहा बाबा आप आज कमरे से बाहर नहीं निकले, गरम कमरा तो गरम था, आप नहीं जाकर योग कराऊंगी और थोड़ा बाबा के महावाक्य सुनाऊंगी। तो बाबा ने कहा अच्छा, हाँ बाबा मान गए क्योंकि चेस्ट पेन था। फिर दादी ने बाबा से पूछा, बाबा डॉक्टर को बुलाएं? बाबा ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, और यहाँ तो अपने डॉक्टर तो थे नहीं, या सिविल हॉस्पिटल है या दूसरा प्राइवेट डॉक्टर्स उनको ही बुलाते थे, और अपना ग्लोबल हॉस्पिटल तो था ही नहीं, है घर में तो कुछ नहीं था। एक हमारे विश्व रतन दादा थे, वो ही थोड़ी डिस्पेंसरी संभालते थे, छोटा मोटा कुछ खांसी हुई, जुकाम हुआ, बुखार हुआ तो देते थे। तो बाबा ने कहा नहीं, सीधा ना कर दिया। जैसे बाबा संपूर्ण हो रहे थे तो कोई बाहर का डॉक्टर भी हाथ लगाए टच करे ना, करेगा तो सही ना, तो बाबा ने बिल्कुल मना किया। फिर उसके बाद दोपहर को जब पत्रक के लिए गए बाबा, तो दादी ईशी दादी का बाबा आज शनिवार है, शनिवार का दिन था, बाबा कल रविवार है, कल तो पोस्ट नहीं होगी, तो बाबा कुछ पत्र कल लिखवाना, अभी रहने देते हैं, क्योंकि बाबा क्योंकि आराम करें बाबा। तो दादी को बाबा ने कहा नहीं बच्चे ठीक है, और आज ही सब पत्रों का जवाब देना, एक पत्र भी कल के लिए छोड़ना नहीं है, देखो ये संकेत थे सारे। तो सारे पत्रों का जवाब दिया, तो 4-5 बजे तक तो बाबा ने सब पत्रों का जवाब दिया। फिर दादी जी को बुलाया, दादी जी ऐसे नहीं जाती थी, मतलब दादी जी को बुलाया, तो दादी जी को कहा कि बच्ची आज सवेरे बाबा ने मुरली नहीं चलाई है, तो आज बाबा मुरली जरूर चलाएंगे, नहीं तो बच्चे सोचेंगे कि बाबा ने मुरली क्यों नहीं चलाई है, क्योंकि इंतजार करते हैं बच्चे बाबा की मुरली आए। तो दादी जी ने बाबा को एक रिक्वेस्ट किया, बाबा मेरा ऐसा विचार है कि 7:30 बजे जो भोजन होता है उसके बाद 8:30 बजे बाबा आते थे, 9:30 तक, जैसे अभी भी रात्रि क्लास होता है 8:30-9:30 से 9:30 तक वो होता था। तो दादी जी ने कहा बाबा ऐसा विचार है कि आप थोड़ा जल्दी क्लास करें, क्योंकि रात को ठंडी है, देर हो जाती है, तो बाबा भोजन थोड़ा जल्दी कर लेते हैं 6:30 बजे, 7:30 की बजाय 6:30 बजे भोजन कर लेंगे, और बाबा आप 7:30 के बाद थोड़ा 8:45 के बदले 7:45, 1 घंटा पहले। तो बाबा ने कहा ठीक है बच्ची, बच्ची ठीक है, हाँ बच्ची ठीक है ना, बाबा कैसे जो समझो कही अगर अच्छी बात है तो बाबा तुरंत ऐसे नहीं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बाबा, ऐसे नहीं पर, तो हाँ बच्ची ठीक है। तो बाबा सब ने भोजन कर लिया रात को, और उसके बाद कैसे बाबा मुरली चलाने गए हिस्ट्री हॉल में, और बिल्कुल नॉर्मल मुरली, जैसे रात्रि क्लास बाबा थोड़ा हल्का रखते थे, मॉर्निंग का क्लास ऑफिशियल होता था, रात्रि क्लास थोड़ा हल्का, और कभी बाबा सेवा की बातें सुनाएंगे, कभी बाबा ज्ञान की गहराई, कभी बच्चों की बातें, प्यार, मतलब हल्का। तो और रात्रि को पूरा किया क्लास, और बच्चों को गुड नाइट कहा, योग करा के उठे, और हिस्ट्री हॉल के दहलीज पर बाबा रास्ते, जैसे ये है ना दरवाजा, उस पर बाबा खड़े हुए, खड़े होकर के बच्चे तो बैठे ही थे, क्योंकि जब तक बाबा जाए तब तक बच्चे उठते नहीं थे, सब बैठे रहे। तो बाबा फिर से मुड़े अंदर, और मुड़ करके झुके, और ऐसे ऐसे झुक करके नमस्ते करके फिर कहा, अच्छा बच्चों, हाँ बच्चे सदा निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी रहना, अच्छा बच्चों से छुट्टी, छुट्टी, ये छुट्टी शब्द बाबा कभी नहीं कहते थे, हमेशा गुड नाइट, नमस्ते, ओम शांति, लेकिन छुट्टी आउजो बताया ना मैंने उस दिन आपको, ये तो होता है कभी नहीं कहते हम जा रहे, क्या कहते हम आ रहे हैं। और बाबा अपने कमरे में गए, और जैसे कमरे में गए तो छुट्टी शब्द तो सबने नोट किया कि बाबा ने ऐसे क्यों कहा छुट्टी, गुड नाइट तो कह दिया था, वो तो क्लास में ही कहा था। और फिर बाबा चले गए, फिर दादी जी को संकल्प आया कि आज बाबा से मैंने पूछा नहीं है कि बाबा तबीयत कैसे है, तो मैं जाती हूँ कमरे में बाबा के और देखती हूँ। तो देखा बाबा लगभग 9:45 9 के बीच में, तो बाबा पलंग पर बैठे हैं और एकदम आंखें बंद ना, दादी जी जो अपना अनुभव सुनाती थी, और भी दो तीन थे, चंद्रहास दादा था और भी थे, तो जैसे अंदर गई तो देखा बाबा पलंग पर बैठे हैं, टांगे नीचे करके बैठे हैं और आंखें बंद, बिल्कुल जैसे एकदम अशरीरी हो गए एकदम। तो दादी बाबा के आगे गई और देखा बाबा तो हिल ही नहीं रहे, एकदम शांत। तो थोड़ा आवाज किया, बाबा बाबा बाबा, और फिर भी देखा बाबा नहीं कुछ रेस्पॉन्ड दे रहे, तो दादी ने बाबा का हाथ पकड़ा, ऐसे हाथ थे बाबा। तो उसी समय बाबा ने आंखें खोली और बस वही घड़ी थी, आंखें खोली और दृष्टि जैसे दादी को दी और हाथ बाबा के, दादी के हाथ में थे और एक सेकेंड का खेल, बस उसी समय आत्मा उड़ गई। अब दादी को तो कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या हो गया, हाथ ढीले पड़ गए, नहीं तो आप तो टाइट होते ना, ढीले पड़ गए, थोड़ा सिर भी झुका होगा, क्या पता, वो तो नहीं मालूम, लेकिन दादी को लगा कि कुछ गड़बड़ है हा? तो उसी से पकड़ तो लिया, फिर उसे तो चंद्रास भाई थे, फिर तो लिटाया बाबा को, फिर डॉक्टर को बुलाया, अभी डॉक्टर भी बाहर से आए, लेकिन कहा डॉक्टर ने तो खत्म। तो बाबा दादी को लगा ये क्या हो गया, आश्चर्य किया, परंतु अभी सबको इन्फॉर्म तो करना ही था। तो रात भर दादी ने कैसे फिर बॉडी को हिस्ट्री हॉल में ले आए और वहां ही रखा, और रात भर लाइटनिंग कॉल्स किए, लाइटनिंग कॉल्स, एक सेकंड का खेल था, यानी खेल कोई लंबा चौड़ा नहीं चला, बस उतना ही, फिर लाइटनिंग कॉल्स किए, क्योंकि नॉर्मल एसटीडी तो उस समय होता नहीं था, यहाँ पर मैनुअल एक्सचेंज था, टेलीफोन एक्सचेंज, उनको कहना पड़ता था कि फलाना नंबर हमको लिख दो, आप पुराने जो होंगे उनको ये मालूम होगा। तो फिर वो टेलीफोन एक्सचेंज से फोन आता था और वो कहते थे कि अभी आप बात करो, और उस समय तो ऐसा था टेलीफोन एक्सचेंज वाले भी सुन सकते थे, वो बीच में डायरेक्ट नहीं था, तो अभी वो भी कहां, जब तक टेलीफोन लगे वो भी मुश्किल था, तो लाइटनिंग कॉल करते थे, लाइटनिंग कॉल माना उसी वक्त मिलता था पर 8 गुना ज्यादा रेट, और उस समय तो कितना फोन के बिल, माना फोन भी महंगा था आजकल की तरह नहीं, तो और लाइटनिंग कॉल, और लाइटनिंग कॉल में जब बाबा दादी मिलती थी, बाबा अव्यक्त हो गए हैं जल्दी आओ, बस दो शब्द कहा और फोन रख दिया, बाबा अव्यक्त हो गए हैं जल्दी आओ। अब क्या अव्यक्त हो गए जल्दी आओ, हुआ क्या लेकिन फिर तो सब समझ गए, कई वतन, कई संदेशियां वतन में ये अनुभव करके आई। दादी गुलजार भी उस समय, जब दादी को बाबा ने, मैंने दादी ने संदेश दिया, गुलजार दादी दिल्ली में थी, वो तो संदेशी थी, और जैसे ही दादी, गुलजार दादी संदेशी थी, तो दिल्ली में दादी वतन में गई और देखा, बताया था ना कि दो स्वरूप अलग जो वो एक हो गए, तो दादी तो समझ गए। और फिर दादी यहाँ आई थी, मधुबन में आई, सब जल्दी जल्दी रात को आई, मैं अपना अनुभव सुना, उस समय मैं कॉलेज पढ़ती थी, 68 जनवरी शनिवार की रात थी, तो सेंटर पर तो मैं शाम को गई थी, हम कॉलेज में जाते थे फिर शाम को सेंटर पर जाते थे, कोई क्लास कराना होता था, म्यूजियम था और म्यूजियम समझाते थे, कोर्स कराते थे, सब कराते थे, और 8 बजे घर चले जाते थे, घर मेरा पास नहीं था बॉम्बे में, तो मैं तो घर चली गई 8 बजे शनिवार को, कुछ भी नहीं था उस समय, परंतु जब मैं रविवार को सेंटर पर आई, तो सेंटर पर देखो तो 2-4 लोग बैठे हैं बस हॉल में, बस और योग कर रहे हैं। मैंने कहा मुरली क्यों नहीं चल रही, क्या हुआ, और नहीं तो मुरली होती है संडे के दिन तो बहुत आते हैं ना, बोरा भरा हुआ होता है, और यहाँ ऐसे। तो एक माता कोने में बैठी थी, मैंने धीरे से बोला, मैंने कहा क्या हुआ, कहाँ गए सब, दादी कहाँ, ये कहाँ, वो कहाँ, क्योंकि बड़ी दादियां और भी थी, पुष्प शांता दी थी, और भी कई दादियां बॉम्बे में रहती थी। तो कहाँ गए? तो कहा सब मधुबन गए। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो कहा कि बाबा अव्यक्त हो गए। बस जैसे ही उसने कहा ना, धीरे से मेरी तो टांगे थिरकने लग गए थे उस समय, मुझे याद है, टांगे थिरकने। बाबा चले गए, बाबा चले गए, बाबा ने शरीर छोड़ा। तो उसी समय मैं जैसे खड़ी थी ना, तो मुझे ऐसे लगा कि ये धरती अभी हिलेगी। हाँ देखो, मैं अपना अनुभव सुना रही हूँ। टांगे तो कांप ही रही थी और धरती हिलेगी और ये जो आकाश है ना, ये फटेगा और ये सारी दुनिया भी खत्म हो जाएगी। ये मेरा उस समय का संकल्प था, बस गई दुनिया खत्म, बस पूरा वो बाबा गए माना खेल खलास, ये खत्म। तो बस एकदम मैं तो कुछ नहीं, क्या शब्द ही मुख से नहीं निकल रहे थे। तो मैं तो सीधा क्या हुआ, क्या हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ कि मैं तो बैठ गई बिल्कुल शांत होकर के। और उस समय मुझे कितना सुंदर अनुभव हुआ, मैं आपको क्या बताऊं। वो क्या अनुभव था, मैंने देखा बाबा का अव्यक्त रूप, एकदम लाइट का रूप, बिल्कुल साक्षात्कार जैसा ही था वो लाइट का रूप बाबा का। और बाबा ऐसे मेरे आगे खड़े हो गए और मेरे सिर पर हाथ रखा, क्योंकि अंदर ही अंदर के बाबा आप चले गए, बाबा आप चले गए, क्योंकि बाबा ने मुझे पत्र लिखा था 1967 में, पत्र लिखा था, क्योंकि मैंने बाबा को लिखा था कि बाबा मेरे घर में सब कहते तुम डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, तो बाबा मैं क्या करूं, क्योंकि बाबा मुझे अच्छी तरह जानते थे, इंग्लिश में होशियार थी, बाबा के आगे इंग्लिश में भाषण करती थी, बाबा को बहुत अच्छा लगता था इंग्लिश में कोई भाषण करे। तो बाबा हमेशा मुझे कहते थे बच्ची तुमको मैं विदेश भेजूंगा, तुम विदेश में सेवा करोगे, बाबा कहते थे। तो और जब बाबा को मैंने पत्र लिखा था तो बाबा ने मुझे जवाब लिखा था बच्ची कि बाबा घर में सब कहते डॉक्टरी पढ़ो, मेडिकल लाइन लो, तो मैं क्या करूं बाबा। तो बाबा ने मुझे जवाब लिखा, पत्र लिखा। हाँ, मैं छोटी थी, 18 साल की थी केवल उस समय, सेकेंड ईयर कॉलेज पढ़ती थी। बाबा ने मुझे पत्र लिखा, बच्ची आप में बाबा की बहुत माना, आपके प्रति बाबा का बहुत आश है कि आप रूहानी डॉक्टर बन करके विश्व की सेवा करो। ये बाबा ने मुझे पत्र लिखा, रूहानी डॉक्टर, क्योंकि मैंने लिखा ना डॉक्टरी पढ़नी है, तो रूहानी डॉक्टर बनकर के विश्व की आत्माओं की सेवा करो। इसका मतलब कि वो डॉक्टरी नहीं पढ़ो, इनडायरेक्टली यही था लिखा, नहीं कि बच्ची डॉक्टरी नहीं पढ़ो और बाबा की सेवा में लगो, विश्व की सेवा करो रूहानी डॉक्टर बन के। तो मैंने तो सोचा अभी मैं क्या करूं, तो फिर मैंने बीएससी किया, बैचलर ऑफ साइंस, इंटर साइंस था, उसके बाद 2 साल कॉलेज में डिग्री मिलती है। तो मैंने वो ज्वाइन किया, तो 69 में मेरा लास्ट ईयर था डिग्री कोर्स का बीएससी। तो बाबा अव्यक्त हो गए, और संडे का दिन था, मंडे से मेरे प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होते फाइनल से पहले, तो उसमें जाना था। तो जब बाबा अव्यक्त हुए तो मैंने कहा बाबा मैंने आपकी इच्छा पूरी नहीं की, यही संकल्प आया, आपने जो बाबा मेरे प्रति इच्छा रखी थी मैं रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करूं, वो इच्छा तो मैंने पूरी नहीं की, आप चले गए, ऐसे लगा चले गए। तो उसी वक्त जो बाबा का मुझे अनुभव किया, अंदर जैसे कि सोच रही थी कि बाबा आप चले गए, से बात ही करें बाबा से, और बाबा का मुझे एक सुंदर, बड़ा सुंदर लाइट के आकार में, जैसे बाबा मेरे सामने खड़े हैं और मेरे सिर पर हाथ रख के कहते बच्ची बाबा चले नहीं गए, बाबा बच्चों के साथ हैं और सदा साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। ये बाबा का जैसे मुझे वो भाषण आई, और बच्ची हाँ बस ये बाबा साथ है, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, बस इतना ये अनुभव जैसे मैंने किया, और मैं एकदम शांत हो गई। तो फिर तो पता चला गुलजार दादी भी वतन में गई और बाबा ने कैसे कहा कि बच्ची बाबा गए नहीं है, केवल कमरा और कपड़ा बदली किया है आदि। फिर तो बहुत, तो उस समय बाबा दादी ने गुलजार दादी को कहा बाबा से पूछो कि बाबा आपकी वो अंतिम स्थिति कैसी थी, अंत घड़ी, क्योंकि दादी जी सामने वो अंत घड़ी कैसी थी। तो बाबा ने उत्तर भेजा संदेशी गुलजार दादी के थ्रू कि बाबा का उस समय, अब जैसे संपूर्ण बन रहे थे बाबा, संपूर्णता को प्राप्त कर रहे थे, बिल्कुल न्यारे प्यारे तो हो ही गए थे 6 मास से, बिल्कुल बाबा 1 साल से लगभग न्यारे न्यारे। कोई बात कोई उनके सामने जाता था ना, समझो कोई बात बड़ा चढ़ा के कुछ भी कह रहा, बाबा उनको कहते थे बच्चे बाबा समझ गए, बाबा समझ गए, माना। अब ज्यादा विस्तार मत करो, क्योंकि ज्यादा आवाज में आना, ज्यादा बोलना, ज्यादा ये सब, बाबा बिल्कुल न्यारे होते गए थे। तो जब बाबा से पूछा गया व्यक्त वतन में, तो बाबा ने कहा कि बाबा कैसे उस समय बिल्कुल अशरीरी बन गए थे, अशरीरी बन गए थे, जैसे ये देह होते हुए भी देह नहीं थी। इसलिए जब दादी ने बाबा 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 कहा तो बाबा ने जवाब तो दिया नहीं, लेकिन उस समय 3 तरफ की खींच थी, 3 बाबा का जो संदेश था 3 तरफ की खींच थी। एक शिव बाबा बुला रहा था, शिव बाबा बुला रहा था बच्चे अब मेरे साथी बन जाओ, कंबाइंड बन जाओ, साथी बन जाओ। दूसरी तरफ जो अव्यक्त स्वरूप वतन का संपूर्ण स्वरूप, वो बुला रहा था, वो बुला रहा था कि अब ये हो जाओ, अब ये हो जाओ। और तीसरी तरफ जो थोड़ा बहुत अंतिम हिसाब किताब था शरीर के साथ, आत्मा तो अशरीर ही बन गई, हार्ट फेल हुआ, हार्ट फेल तो उस समय तो कितना दर्द होता होगा, हाँ नहीं होता है एकदम, जितना लोग चिल्लाते हैं जब हार्ट अटैक आता है, तो उस समय कैसे बाबा वो आया होगा कुछ भी, लेकिन बाबा एकदम अशरीरी बन गए, तो आवाज भी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जैसे देह से एकदम न्यारी हो गई आत्मा। और ये 3 प्रकार की खींच थी, एक बाबा शिव बाबा बुला रहे थे, दूसरा संपूर्ण स्वरूप बुला रहा था, तीसरा अंतिम हिसाब किताब जो शरीर का, और चौथे तरफ इतने सब बच्चे याद आ रहे थे लाखों बच्चे। और उस समय जैसे बाबा ने दादी जी को याद किया, क्योंकि हैंडओवर करना है ना, और वैसे ही दादी जी तो संभालते थे, दादी जी बॉम्बे में रह करके महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ, आंध्रा, कर्नाटक में जो सेंटर्स थे ना, तो उनका सारा दादी जी देखते थे, और दीदी जी मधुबन में रह करके नॉर्थ जोन देखती थी। तो जैसे बाबा ने दोनों को वैसे ही डिवाइड करके दिया हुआ था, तो जैसे दादी दीदी तो गए हुए थे, तो दादी जी तो थे मधुबन में, और उस समय तो नहीं थी कमरे में, बाबा तो चले गए कमरे में। तो जैसे बाबा ने अंत में दादी जी को याद किया, और दादी जी को संकल्प आया उसी घड़ी कि मैं जरा जाऊं, क्योंकि अभी इतनी देर नहीं हुई है, तो मैं जाकर बाबा को गुड नाइट तो करके आऊं और बाबा से तबीयत का हाल पूछूं। और उस समय वो आई कमरे में, और जैसे बाबा इंतजार कर रहे हैं, उधर बाबा को शिव बाबा की खींच, संपूर्णता की खींच, और कैसे दादी को जैसे सब हैंडओवर करना है बिना कुछ कहे, वहां तो कह के आई क्लास में निराकारी निरंकारी निर्विकारी बनना है और छुट्टी, और या बच्चों से भी तो छुट्टी, औरों से भी तो ले। तो जैसे दादी जी सामने आए, और जैसे बाबा ने एक मुरली में भी कहा था कि दृष्टि और हाथ, इससे सारी विल पावर्स दादी को विल कर दी, जैसे विल कर दी दृष्टि और हाथ। अब जैसे ही मतलब क्या करना है, वो दादी जी ने किसी को रोने नहीं दिया, किसी को इतनी दादी के अंदर उस समय शक्ति आ गई, कोई ने नहीं रोया। अब दो दिन तक बॉडी को रखा था क्योंकि दीदी का इंतजार था, गुलजार दादी आ गई थी। और बॉम्बे से सब गए भाई, उस समय रात को 11 बजे ट्रेन चलती थी, 10 बजे ट्रेन चलती थी, बहुत रात की ट्रेन होती थी। तो कोई ऐसे ही चले गए ट्रेन में, कोई कैसे गए मतलब पहुंच गए। तो 19 तारीख बॉडी को रखा, 20 तारीख बॉडी को रखा, 21 तारीख दिन के समय या 2 बजे के बाद संस्कार किया, जहाँ शांति स्तंभ है। लेकिन उसी बीच गुलजार दादी कितनी बार वतन में गई, वतन में जाके बाबा का संदेश लेकर आती थी, बहुत संदेश लेकर के आती थी। और आके के दादी को बताती थी कि कैसे अभी बाबा का कार्य चलेगा। और उसके बाद जैसे सब दादियां आ गई थी मधुबन में, 1950 में जब कराची से आए तो सब साथ में थे। फिर बाबा ने एक 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 करके सब बहनों को भेजा सेवा केंद्रों पर, और फिर कैसे बाबा व्यक्त हुए, सबको मधुबन बुला लिया। और 21 तारीख को जो अव्यक्त वाणी चली थी उसमें बाबा ने कहा कि अभी यहाँ बठिया चलेगी, अभी ये होगा ये होगा। तो इसी प्रकार से सारा कार्य हुआ, लेकिन दादी जी ने किसी को रोने नहीं दिया। और अव्यक्त बाप दादा ने जो संदेश जो मुरली चलाई, कैसे अभी शिव शक्तियां मैदान में आएगी, शिव गुप्त हो जाएगा, सूर्य और चंद्रमा गुप्त रहेंगे और धरती के सितारे चमकेंगे। शिव गुप्त और शक्तियां आगे, शिव शक्तियों को प्रत्यक्ष करेगा और शक्तियां शिव को प्रत्यक्ष करेगी। ये बाबा ने सब कुछ मुरलियों में कह दिया। और बच्चे बाबा के पास जैसे आते थे वैसे आते रहेंगे और इतनी वृद्धि होती रहेगी, वृद्धि होती रहेगी। मानो उस सारी मुरली उसी पर थी। और फिर दादी जी ने भी एक क्लास कराई थी इस पर, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्थिति जो बाबा की उस समय की थी, वो कैसे हम बच्चों को अभी लानी है। तो निराकारी स्थिति का मतलब क्या है, जिसको हम बीज रूप की अवस्था कहते हैं, जिस बीज में सारा सार है। आज बाबा ने कहा ना, अनादि गुण और आदि गुण। अनादि गुण है आत्मा के मूल गुण, और आदि गुण, आदि संस्कार, अनादि संस्कार। बाबा ने ये दो शब्द कहे आज की अव्यक्त मुरली में। तो अनादि संस्कार माना आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो कौन सा है, हा? जो सात मूल गुण बताए। और आदि संस्कार कौन से हैं, जो दैवी गुण है, देवताओं के गुण हम मानते हैं। तो जो 36 गुण है ना, तो गुण तो बहुत है, लेकिन ये 36 गुण मेन है जिसको हम दैवी गुण कहते हैं। तो इसलिए वो हम बच्चों को धारण करने हैं। तो ये सात गुणों के ही आधार पर वो सारे गुण, इस पर विचार सागर मंथन बहुत हो सकता है कि अंतर्मुक्ता में कौन सा अनादि गुण चाहिए, हर्षित मुक्ता में कौन सा अनादि गुण चाहिए। जो सात मूल गुण है, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद और शक्ति, तो उसमें अंतर्मुक्ता में कौन सा विशेष गुण चाहिए, पवित्रता में कौन सा चाहिए, हर्षित मुक्ता में कौन से गुण चाहिए। क्योंकि ये दो गुणों का तीन गुणों का मिश्रण ये हो जाएगा वो दैवी गुण। तो एक ये विचार सागर मंथन आप लोग कर सकते हो। जैसे सात रंग होते हैं और एक्स्ट्रा आठवां कोई रंग नहीं है। हम लोग स्कूल में नहीं पढ़ते थे वो, क्या आप लोग गुजराती में क्या बोलते हैं, हाँ इंद्रधनुष। तो इंग्लिश में है विब ग्योर, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, बस ये सात मूल कलर्स है। तो इन ये कलर्स का कोई भी मिक्सचर वो अलग कलर बन जाता है, वो अलग अलग, पर हैत मूल में सात गुण, सात रंग, सात सुर, सात रंग, सात दिन, इसलिए सात का बड़ा महत्व है। तो इसलिए ये दैवी गुण है और इनके आधार से हमारे अनादि और आदि संस्कार आत्मा में निहित है। तो वो निराकारी स्वरूप माना वो अनादि संस्कार वाला स्वरूप जिसमें सातों ही गुण आत्मा अनुभव करे। कई हम लोग क्या अंतर बताते, जैसे हम कई बार योग में बैठते हैं, योग में बैठते हैं तो अभी योग कर रहे हैं या नींद कर रहे हैं पता भी नहीं चलता है। तो एक है योग निद्रा और दूसरा है निद्रा योग, अंतर है या नहीं? हाँ, अंतर है या नहीं निद्रा योग और योग निद्रा में क्या अंतर है? हाँ, निद्रा योग माना जी हाँ हम बैठे हैं योग में, तो योग में बैठे बैठे और हमको लगता है फिर योग में बैठे हैं, फिर झटका आया और हमको लगता है हम तो योग में बैठे हैं, ये पता ही नहीं है कि नींद भी बीच बीच में आई रही और उसमें शांति का तो बहुत अनुभव होता है। तो हम किसी से पूछेंगे भाई साहब क्या कर रहे थे, बहुत शांति मिली लेकिन वो नींद की शांति है, भले वो योग का स्वरूप है, बैठे हैं कुछ सो नहीं रहे हैं, लेकिन वो शांति की अनुभूति निद्रा योग में भी होती है। पर योग निद्रा में क्या होगा, सोए हैं, विश्राम कर रहे हैं। साधु सन्यासी महात्मा गुरु लोगों के लिए कभी नहीं कहते सोए हैं, सोए हैं कभी नहीं कहते, क्या कहते हैं? हाँ, विश्राम कर रहे हैं। देवताओं को भी रात को नींद में थोड़ी भेजते, क्या करते हैं? विश्रामी हो रहे, विश्राम। ये विश्राम शब्द बड़ा रॉयल शब्द है, नींद ये तमोगुणी शब्द है ये तमोगुणी शब्द है, क्योंकि नींद में तो घोर निद्रा भी है, खराटे भी देते रहेंगे और नींद में तो लुढ़कते भी हैं, यहाँ सोए और यहाँ उठते हैं कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। और योग निद्रा ये क्या है, जैसे सोए बस लेटे हैं, जैसे बिल्कुल फरिश्ता समान और चेहरा भी मुस्कुरा रहा है और उस मुस्कुराते हुए चेहरे में है विश्राम, आत्मा को भी विश्राम है, शरीर को भी विश्राम है, लेकिन वो आत्मा के जो गुण है वो भी अनुभव हो रहे हैं और विश्राम में भी है। तो केवल शांति नहीं, परंतु शांति के साथ ये सारे ही गुण, ज्ञान का भी मनन चिंतन, जब हम योग में बैठते हैं तो ज्ञान का भी मनन चिंतन हो, पवित्रता की भी अनुभूति हो, शांति की भी गहराई में जाए और आत्मा प्रेम स्वरूप है ये भी अनुभव करे, सुख स्वरूप तो है ही, अंतर आत्मा का संतोष ये उसकी सुख स्वरूप की स्थिति है, और फिर उसके बाद आनंद स्वरूप, सब इंद्रियों के आकर्षण से परे आत्मा के आनंद में, आत्मानंद की स्थिति में, और शक्ति तो है ही है। तो ये सात मूल गुण आत्मा जब अनुभव करे वो निराकारी अवस्था है, और वो अवस्था अशरीरी अवस्था जैसे होती जाएगी होती जाएगी, देह से न्यारे होते जाते हैं, वो अनुभव हम कर सकते हैं योग में। लेकिन कई कहते हैं कि कर्म में हम कैसे करें, तो कर्म में देही अभिमानी स्थिति है, जैसे बाबा ने कहा ना भाई सेवा भी है और बाबा की याद भी है, हाथों से सेवा कर रहे लेकिन बुद्धि में क्या है, बाबा करवा रहा है, मैं तो केवल निमित्त हूँ। अब ये निमित्त हूँ ये जो स्थिति है, ये अशरीरी स्थिति, ये देही अभिमानी स्थिति है, अशरीरी स्थिति से तो निराकारी स्थिति तक पहुँचते हैं, पर देही अभिमानी स्थिति कर्म में करते समय भी अनुभव हो सकती है, बाबा मुझसे करा रहा है, मैं निमित्त हूँ, बाबा ने ये मुझे दिया, बाबा का ही है, तो हर वक्त बाबा की याद और उसमें आत्म अभिमानी स्थिति भी है, तो निमित्त बन करके बाबा से शक्ति लेकर के ये मैं हाथ चला रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, और शक्ति उनकी है। बताए ना डॉक्टर के ऑपरेशन करेगा वो क्या कहेगा, हाथ मेरे हैं पर शक्ति उनकी है, इसको कहते हैं हम तो उपचार करेंगे पर बीमारी का निदान करना ये तो उसके हाथ में, आप लोगों को मालूम होगा वो अंबानी, अंबानी तो उस समय मैं बॉम्बे में थी जब अंबानी ने शरीर छोड़ा था हॉस्पिटल में, इसका बाप जो हाँ, तो मुकेश का बाप, क्या नाम था उसका, हाँ धीरू भाई अंबानी, तो उस समय कई उन्होंने निमंत्रण दिया था, हॉस्पिटल था बहुत बड़ा हॉस्पिटल, तो निमंत्रण दिया कि जो भी आना चाहे वो आकर के नीचे मेडिटेशन करे, कमरा बनाया था और वो आकर के मेडिटेशन करे, क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया था कि हम कुछ नहीं कर सकते, अभी आप भगवान को याद करो। तो उसने कईयों को निमंत्रण दिया था, बड़े बड़े संस्थाओं के गुरु लोग, महात्मा लोग, सन्यासी लोग, और ब्रह्मा कुमारियों को भी निमंत्रण दिया था कि आप लोग आकर के अपना मेडिटेशन करो। तो हम लोग, मैं भी गुलाब, तब मैं बॉम्बे में रहती थी, तो हमको भी कहा, तो मैं गई थी और हम लोगों ने यह मेडिटेशन किया, और वहाँ उसका कुछ मतलब, वो तो बहुत सीरियस तो था ही, लास्ट स्टेज तो थी, ताकि चलो शांति से जाए, बाकी और क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बस मेडिटेशन ही करना होता था। तो कहने का भाव है कि डॉक्टरों ने तो यही कहा कि भाई हम तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, बाकी भगवान को याद करो, और क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए हम भी हर कर्म में क्या अनुभव करें, निराकारी अवस्था तो योग में बैठने का वो अनुभव तब होगा जब कर्म करते समय हमारी देही अभिमानी स्थिति रहे। अगर कर्म करते समय वो देह अभिमान की स्थिति है, भान बहुत ज्यादा आता है, शरीर का भान बहुत ज्यादा है, मैं मेरा हर वक्त, मैं मेरा यही बुद्धि में रहता है, अभिमान अपमान यही महसूस करते रहते हैं, ईर्ष्या द्वेष, तो फिर कहाँ निराकारी स्थिति बनेगी। निराकारी स्थिति के लिए तो पहले पूरा देही अभिमानी बनना पड़े हर कर्म में, आत्मिक दृष्टि बनानी पड़े हर कर्म में, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अनुभव की, बाबा के आगे वो लौकिक बच्चे सब अलौकिक में मिक्स हो गए, ये कभी नहीं बाबा ने सोचा कि ये मेरे बच्चे हैं और बाकी नहीं, अलौकिक प्रजापिता बने। तो प्रजापिता माना क्या, सारी प्रजा के पिता। कई लोग देखो आप और संस्थाओं में जाएंगे तो वहां पर भाई भतीजावाद बहुत है, अगर गुरु अपने गद्दी किसको देगा, अपने भतीजे को देगा, भांजे को देगा, फलाने को देगा, फलाने को देगा, हाँ सब जो रिश्तेदार रिश्ते होंगे ना, अपने बच्चे को देगा, अभी कईयों में अब उनके बच्चे भी होते हैं उनको देगा, लेकिन यहाँ लौकिक की तो बात ही नहीं है। दादी निर्मल शांता, दादी प्रकाशमणि से बहुत बड़ी थी उम्र में, बड़ी थी दादी, लेकिन दादी निर्मल शांता को थोड़ी सौंपा, किसको सौंपा, जो योग्य थी, दादी प्रकाशमणि। दीदी का भी कोई संबंध नहीं था लौकिक में बाबा के साथ, लेकिन दीदी और दादी दोनों के सिर पर जैसे बाप दादा आए ना, तो दीदी भी थी दादी भी थी, तो बाबा ने दोनों को बुलाया और दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा कि अब ये आगे रहेंगी, बाबा इनके द्वारा श्री मत देंगे, जबकि उनका लौकिक में बाबा से कोई संबंध नहीं था, और ब्रह्मा बाबा ने किसी को नियुक्त नहीं किया, अपने मुख से अपने शब्दों में कि ये अभी चलाएगी, पर हाँ अंत में कैसे ड्रामा अनुसार दादी जी सामने थे और जैसे विल पावर मिल गई, लेकिन अव्यक्त बाबा ने नियुक्त किया, क्योंकि फिर क्या हुआ कि अभी कौन बाप दादा किसके रथ में आए ये भी अभी डिसाइडेड नहीं था, क्योंकि बाबा के साथ संतरी दादी रहते थे, संतरी दादी बाबा के साथ रहती थी, वो बहुत बहुत पावरफुल संदेशी थी, और उसको कहते थे हम लोग गो सुन कम सुन दादी, क्योंकि समझो ब्रह्मा बाबा को वतन से कोई संदेश लाना था अव्यक्त बाप दादा से, अब संदेशी को कहते थे बच्ची जाओ बाबा के पास वतन में, बाबा से ये बात पूछ के आओ कोई भी बात, और जल्दी जाओ जल्दी आओ, तो बाबा उसको दृष्टि देते थे, बस बाबा के सामने ही बैठती थी और बाबा ने दृष्टि दी, एकदम पावरफुल दृष्टि दी, दो सेकंड उड़ गई उड़ जाती थी एकदम, जैसे देह से न्यारी हो गई। और जो बाबा का संदेश होता था वो अव्यक्त बाप दादा को सुनाती थी और वहां से संदेश लाती थी। अब ये सब बाबा की करामात वही जाने। कई कहते सूक्ष्म वतन क्या है, ये तो साक्षात्कार की दुनिया है, ये स्थूल दुनिया नहीं है, ये साक्षात्कार की दुनिया है, ये बाबा द्वारा रची हुई विशेष संगम युग के लिए ये विशेष पाठ की ये दुनिया है। इसको वैज्ञानिक नहीं समझ सकेंगे, वैज्ञानिक बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे कि ये क्या होगा, क्योंकि प्राकृतिक दुनिया नहीं है। जो प्रकृति की दुनिया हो वहां हम इस शरीर के साथ जा सके ऐसे नहीं है। वो तो जिसको बाबा जिसकी रस्सी खींचे उनको ही अनुभव हो और वो ही बाबा का संदेश लेकर के आए। कई बार दादी गुलजार को दादी जी कहती जाओ बाबा के पास, और दादी गुलजार बैठती है लेकिन रस्सी नहीं खींचते बाबा, रस्सी नहीं खींचते। आप लोगों को मालूम होगा ना 1968 में दिसंबर में बाबा को बॉम्बे जाना था, मालूम है ये बात? हाँ, तो बॉम्बे जाना था। हाँ मैंने एक बार कहीं जी किसको मालूम है, आपको ही पता है। तो क्या हुआ कि बाबा ने संदेशी को कहा कि बच्ची बाबा के पास जाओ और बाबा से छुट्टी लो कि बाबा बॉम्बे जाएंगे। और जो बाबा के साथ जाने वाले थे वो सब चले गए थे आबू रोड, टैक्सी बाहर खड़ी थी, सामान रखा हुआ था टैक्सी पर, और बाबा ने दादी संतरी को कहा बाबा से छुट्टी लेकर आओ वतन जा। तो बाबा ने दृष्टि दी तो दादी जा ही नहीं, खींचे ही नहीं रस्सी, खींचे ही नहीं। तो दादी ने कहा बाबा रस्सी नहीं खींच रहा है, रस्सी नहीं खींचे, जाऊं कैसे? शिव बाबा रस्सी खींचे तो जाऊं। तो फिर उसके बाद बाबा को तो भी छुट्टी लेनी थी, सब चले गए बाबा को जाना है और रस्सी नहीं खींच रहे। तो आखिर ब्रह्मा बाबा ने प्रकाश दिया और ध्यान में तो गई, लेकिन वतन में गई तो वतन खाली, बाबा दिखाई नहीं दे रहा है, बाबा दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहते घूम फिर करके वापस आ गई, बाबा ही नहीं मिला उनको। तो बाबा समझ गए कि शिव बाबा का इशारा है कि बच्ची नहीं जाओ। अब बाबा सीधा कैसे कहे, बाबा तो बाप समान है ना, तो बाबा को कैसे अव्यक्त बाबा कहे कि नहीं जाओ। तैयारी सारी हो गई है, पर बाबा समझ गए कि बाबा का इशारा है नहीं जाओ। और उस समय हम बॉम्बे में थे, मैं बॉम्बे में रहती थी, तो और बाबा के लिए हम लोगों ने मकान लिया था किराए पर, बस कल बाबा आएंगे और यहाँ रहेंगे, हम सब बाबा से मिलने जाएंगे, बाबा यहाँ मुरली चलाएंगे। 3 महीना बाबा बॉम्बे रहते थे और बाबा तो आए नहीं। भाई क्यों नहीं आए बाबा? शिव बाबा ने छुट्टी नहीं दी। क्यों नहीं आए? शिव बाबा ने छुट्टी नहीं दी क्योंकि बाबा मिलने ही नहीं आए, वतन में बुलाया ही नहीं, और बुलाया भी तो मिले नहीं। अब वो तो शिव तो बाबा के हाथ में, रस्सी खींचना न खींचना, आना न आना, मिलना न मिलना, अब इसमें हम लोगों का तो कुछ है ही नहीं। तो देखो बिल्कुल बाबा का सारा प्रोग्राम जो कितना बना हुआ होगा वो सब कैंसिल करना पड़ा क्योंकि बाबा मधुबन से नहीं गए। और फिर देखो जनवरी में तो बाबा तो अव्यक्त हो ही गए। तो इसीलिए कैसे ब्रह्मा बाबा निराकार अवस्था को प्राप्त करते गए। बैठते थे यहाँ हिस्ट्री हॉल के, यहाँ पर है ना जहाँ ऑफिस है, वहाँ बाबा खड़े होते थे, खड़े होते होते एकदम बाबा के आगे आ जाते थे और एकदम बाबा दृष्टि दे रहे, सारे खड़े हो जाते। बाबा तो लंबे थे, 6 फुट से ऊंचे थे, अब एकदम खड़े हो जाएंगे और सब खड़े हो जाते थे और बाबा दृष्टि देते थे, पता चलता था शिव बाबा कार्य कर रहे हैं, शिव बाबा कार्य कर रहे हैं। लास्ट के दिनों में तो अंतर का तो पता ही नहीं चला, शिव बाबा आए हैं अभी या अभी नहीं है, जैसे कि था ही, जैसे गुलजार दादी में हम देखते हैं। तो इसी प्रकार हम महसूस करते हैं कि बाबा निराकारी अवस्था में थे और निरंकारी भी बाबा इतने ही। समझो बाबा के आगे हम गए, अच्छा बच्चे, हाँ बाबा वहाँ बाबा बच्चों से पूछते थे, बच्चे ऐसे करें, ये नहीं मैं जो कहता हूँ वो करो, ऐसे नहीं, बच्चे ऐसे करें, बच्चे आपकी क्या राय है। जैसे बड़ा बेटा तो बाप समान हो गया ना, तो ऐसे नहीं कि ये मेरा बच्चा है तो मैं जैसे कहूँ वैसे ही करेगा। देखो छोटे बच्चों को तो हम कह सकते हैं कि बेटा बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे नहीं करो, बेटा ऐसे करो, लेकिन जैसे बड़े होते जाते हैं तो है? वो तो जैसे समान हो जाते हैं, और समान होने के बाद ये उनको कह नहीं सकते कि ऐसे करो ऐसे करो, उनसे राय ली जाती है, आपका क्या विचार है, आप क्या कहेंगे। तो बाबा बच्चों से राय लेते थे, इतने निरंकारी बनकर के राय लेते थे, और इतनी पवित्र दृष्टि, इतनी पवित्र दृष्टि। बाबा माताओं को देखकर कहते थे वंदे मातरम, बाबा ऐसे करते थे। अब वो माताएं बिचारी बूढ़ी बूढ़ी हैं, बिल्कुल अनपढ़ कैसी होगी, लेकिन बाबा उनके आगे वंदे मातरम कहते, बाबा तो बाबा के को कहते बाबा ऐसे मत करो हा? लेकिन बाबा इतने निरंकारी होते थे, कोई गुरु गोसाई कोई ऐसे करे, बाबा अपने साथ बिठाते थे, कोई गुरु तो ऐसे अपने शिष्य को अपने साथ बिठाए। तो दादियां भी ऐसे ही थी, एक बार क्या हुआ, बड़ी दादी के साथ हम बैठे थे, तो दादी जी ने मुझे कहा, क्योंकि और भी आ गए थे, तो मुझे कहा मेरे साथ बैठो, इधर बैठो। तो दादी के पास मैं बैठ गई, तो अखबार वाले थे, पत्रकार थे, तो एक पत्रकार ने बहुत अच्छी बात कही, कहा कि दादी जी आपके अंदर इतनी निर्माणता है, आज कोई गुरु के पास जाओ तो गुरु के पास कोई बैठ भी नहीं सकता है। बैठ सकते हैं कोई, कोई उनके नजदीक ऐसे बैठ सकते हैं? चलो वो गुरु उठ गया, दूसरा उसकी जगह बैठ सकता है उस गद्दी पर? तो दादी जी चले गए, उसके बाद दादी ने मुझे कहा आप इनको अटेंड करो, तो दादी चले गए, मैं उन दादी की कुर्सी पर आके बैठ गई। तो उसने मेरे को कहा कि कमाल है आपकी दादी, इतनी निरंकारी, आप उनकी जगह बैठ गए, ये दादी की फिक्स सीट नहीं है क्या है? हमने कहा यार कोई गुरु की गद्दी नहीं है, ऐसे नहीं कि गुरु की गद्दी है उस गद्दी पर कोई नहीं बैठेगा, ये तो सबके लिए, आप भी आके बैठ सकते। नहीं 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 कई बार होता है ना स्टेज पर हम उनको कहते यहाँ बैठो, नहीं 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 नहीं, वो समझते हम तो इसके लायक नहीं है, ये तो गुरु की गद्दी है। पर हम कहते नहीं, ये तो क्योंकि थोड़ा ऊंचा स्थान चाहिए ताकि सबको देख सके और सब उनको देख सके, इसलिए थोड़ा ऊंचा स्थान बना, पहले तो ये भी नहीं था, ये तो बाद में स्टेज बनाई है, पहले तो नीचे ही था सब, और नीचे बाप दादा आते थे हिस्ट्री हॉल में, तो हिस्ट्री हॉल में पता है बाबा कहाँ बैठते थे? ब्रह्मा बाबा भी अपने कमरे में तो नीचे ही बैठते थे, इसलिए कि पलंग पर बैठ करके मिलते थे, नीचे जो गद्दी बनी ना वहां बाबा बैठते थे। और हिस्ट्री हॉल में भी अव्यक्त बाप दादा जो ये खिड़की है ना, खिड़की साइड में बहनों के तरफ, वहां पर बाबा के लिए गद्दी बनाते थे, और बिल्कुल आस नजदीक से हम जैसे बैठते थे, और बाबा क्योंकि माइक्रोफोन भी इतना नहीं था, माइक्रोफोन तो ब्रह्मा बाबा को पसंद ही नहीं था, तो इतना बाबा नजदीक बाबा को सुनना पड़ता था, इतनी आवाज सॉफ्ट, फिर तो माइक्रोफोन रखना पड़ा क्योंकि आवाज तो सुनाई नहीं देती थी। लेकिन कहने का भाव है बाबा इतने निर्माण होकर के मिलते थे, जैसे बच्चे और बाप का संवाद होता है, इतना नजदीक। तो ये निरहंकारी पने की स्थिति है और निर्विकारी पने की स्थिति है। निर्विकारी पना माना कभी बाबा के मुख से थोड़ी ऊंची आवाज भी नहीं सुनी, उस हिसाब से बाबा मुरली में तो गजगोर करते थे क्योंकि माइक तो चलाते नहीं थे, तो लास्ट तक सुनना है तो बाबा की आवाज तो स्ट्रांग थी। लेकिन जब बाबा आपस में बातें करते थे ना, मिलते थे बच्चों से, तो कोई आवाज कोई बहुत स्ट्रांग नहीं होता था, और कभी तो ऐसे लगता था कि बाबा तो ऐसे बात कर रहे और देखो बात करते करते न्यारे हो गए, बिल्कुल अभी अभी मिल रहे हैं, अभी अभी एकदम न्यारे होकर के केवल दृष्टि दे रहे हैं। तो जैसे बाबा के नजदीक जाते थे अशरीरी हो जाते थे, तो आप सोचो निर्विकारी स्थिति कितनी होगी। दादी जी के आगे भी ऐसे अनुभव करते थे, मेरा ये सौभाग्य रहा है कि सब दादियों से मिलने का, उनके नजदीक रहने का अनुभव है। तो बड़ी दादी के पास भी हम जाते थे, कैसे न्यारी रहती थी दादी। धीरे धीरे सारे जितने भी उनके जो कारोबार थे सब दादी बांटती गई बांटती गई बांटती गई। और जब दादी गई तो कोई ऐसे नहीं लगा कि दादी चली गई अब कैसे यज्ञ चलेगा। वैसे बाबा का भी ऐसा ही था, बाबा चला गया यज्ञ कैसे चलेगा वो महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि बाबा ने कैसे सब कुछ संभालने के लिए दे दिया। संभालते गए संभालते गए संभालते गए और इतना सहज जैसे मक्खन से बाल। देखो और संस्थाएं होती है जब हेड जाता है ना तो कितने झगड़े हो जाते हैं, बहुत झगड़े होते हैं। अक्सर करके तीन बातों पर झगड़े होते हैं किसी भी संस्था में, कोई भी धार्मिक संस्था। एक होता है गद्दी पर झगड़ा, दूसरा होता है पैसे पर झगड़ा, पैसा देखिए किसका है, और तीसरा होता है चरित्र पर झगड़ा, मानो जिसको बिठाया वो चरित्रवान इतना नहीं है। तो सारे शिष्य बिगड़ जाते हैं कि ये तो ठीक नहीं है, इस गद्दी के लायक नहीं है। और दूसरा पैसा जो होता है वो नाम पर होता है, और तीसरा तीसरा क्या बताया, चरित्र पैसा और तीसरा गद्दी पर कौन बैठे। तो उसमें कई बार दो मतें हो जाती है, वो सोचे मैं बैठूं वो सोचे मैं बैठूं। अब यहाँ पर ये जो तीनों कारण यहाँ है नहीं, पहला कारण तो शिव बाबा ने डायरेक्ट स्थान दिया, किसी देहधारी ने नहीं दिया, अव्यक्त बाप दादा ने दादी और दीदी को आगे नियुक्त किया। दीदी चले गए तो दादी के साथ जानकी दादी और चंद्रमणि दादी, इन तीनों को इकट्ठा किया। तो कैसे ये तीन इसको चलाएंगे। और मम्मा चली गई तो बाबा ने दीदी को आगे रखा, बना इट वॉज सच अ उतना सहज फ्लो। इसीलिए किसी का प्रश्न नहीं था कि ये दादी प्रकाशमणि क्यों, हालांकि इनसे बहुत बड़ी बड़ी उम्र की दादियां थी। जानकी दादी भी दादी प्रकाशमणि से बड़ी थी, दादी पुष्प शांता, दादी ब्रिज इंद्रा, निर्मल शांता दादी सब बड़ी थी, क्योंकि दादी जी जब आए तो 14 साल की थी और ये तो सब बड़ी बड़ी थी। लेकिन उनको न दे करके दादी प्रकाशमणि को दिया। एक बार दादी प्रकाशमणि ने, दादी जी अपना अनुभव सुना रही थी हम लोगों को, मधुबन निवासियों को, कि कैसे, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि दादी ने बाबा ने दादी जी को कैसे दिया। लेकिन मैं जो और मेरे साथी थे दादियां, उनको मैं इतना आगे रखती थी, इतना आगे रखती थी, इतना माना उनका जो सम्मान होता है अपने से भी ज्यादा उनको देती थी। इसी प्रकार से कैसे सभी दादियों का दिल दादी प्रकाशमणि ने जीत लिया और इनको आगे किया। तो देखो ये, और ये परिवार है, ये कोई गुरु की गद्दी की तो बात ही नहीं है। तो इसीलिए चॉइस किसकी थी, ये भगवान की चॉइस है, इसलिए कोई प्रश्न नहीं। दूसरा पैसे की जहां बात आती है, पैसा किसी का नहीं है यहाँ, ये ट्रस्ट है, फाउंडेशन है, किसी एक व्यक्ति के नाम पर तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए कोई अपना अधिकार जमा ये मेरा है ये तो है ही नहीं, इसीलिए पैसे पर भी कोई झगड़ा नहीं है। और चरित्र की तो बात ही नहीं है, हमारी दादियों के तो कितने ऊंचे चरित्र, बाबा का कितना ऊंचा चरित्र जो कोई उनके आगे उंगली भी नहीं उठा सके, ऐसी बाबा की शक्ति थी। तो ये भगवान का कार्य इस प्रकार से चल रहा है, और बाबा हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि बच्चे ऐसे बाप समान निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी होके रहो तो संपन्न संपूर्ण बन जाएंगे। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हाँ अभी यही पक्का करके जा रहे हैं भैया, तो घर में जाएंगे कैसे रहेंगे, निराकारी निरंकारी निर्विकारी रहेंगे ना। आगे करो, सबको सबको सम्मान दो, सबको प्यार दो, तो देखो सब कितना आपसे प्यार से रहेंगे, कितना आपको रिस्पेक्ट देंगे, क्यों नहीं देंगे? आप उनको उनकी उसी शुभ भावना शुभकामना से देखो, जैसे बाबा कहते हैं ना कि आप पूर्वज हो, उस पूर्वज की नजर से देखो। तो ये ईर्ष्या द्वेष ये तो सब छोटी छोटी बातें हैं, इनसे आत्मा बहुत न्यारी बन सकती है। एक सेकंड में न्यारे हो जाओ, एक सेकंड में ऊंचे चले जाओ, हाँ तो ये बाकी बातें क्या 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 लगेगी, बहुत छोटी लगेगी। चलो ओम शांति जी, किसी को कुछ पूछना है जी? अच्छा योग, एक मिनट अभी बैठेंगे योग के बाद, सभी बैठे रहो क्योंकि कुछ आपको सूचना देनी है।